ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. ஆஜ் பஹத் சுந்தர் விஷய் யே தியா கயா ஹை, சந்துஷ்டதா. கியோங்கி ஜைசே கோய் பி யூனிவர்சிட்டி ஹோத்தி ஹை தோ உஸ் யூனிவர்சிட்டி கி படாய் ஹோத்தி ஹை ஔர் படாய் கே பாத் பாஸ் வித் ஆனர்ஸ் ஜப் ஹோத்தே ஹை தோ சர்டிஃபிகேட் மில்தா ஹை. தோ பாபா கஹே ஹமாரி பி யே காட்லி யூனிவர்சிட்டி ஹை ஔர் இஸ் காட்லி யூனிவர்சிட்டி கி ஜோ படாய் ஹை உஸ் படாய் மே அகர் சம்பூர்ண பாஸ் வித் ஆனர்ஸ் பன்தே ஹை தோ தீன் சர்டிஃபிகேட் மில்தே ஹை ஔர் யே தீனோ சர்டிஃபிகேட் பிராப்த கர்னே காஹி ஹமாரா எக் லக்ஷ ரஹதா ஹை, புருஷார்த் ரஹதா ஹை. யே தீனோ சர்டிஃபிகேட் கோ ஹம் பஹுத் அச்சே சே ஜான்தே ஹை. ஸ்வயம் ஸ்வயம் சே சந்துஷ்ட், பரிவார் முஜ் சே சந்துஷ்ட ஔர் பாபா முஜ் சே சந்துஷ்ட. தோ யே தீனோ சர்டிஃபிகேட் தபி ஹம் கிளேம் கர் சக்தே ஹை ஜப் ஐசா படாய் கோ ஜீவன் கே அந்தர் கிரஹண் கியா ஹுவா ஹை, நஸ் நஸ் மே ஜைசே உஸ்கோ சமாயா ஹுவா ஹை, தப் ஜாகர் கே யே தீனோ சர்டிஃபிகேட் ஹமே ப்ராப்த ஹோதே ஹை. ஔர் பிராமண ஜீவன் கே அந்தர் ஜெய்சே பாபா நே கஹா கே எக் பஹுத் படா விஷேஷ வரதான் ஹை கி ஜின் ஆத்மாவோ கோ யே தீனோ சர்டிஃபிகேட் ப்ராப்த ஹோ ஜாயே. வஹி தோ 108 கி மாலா மே பிரோ ஜாதே ஹை, யா 8 கி மாலா மே பி பிரோ ஜாதே ஹை. तो एक है यूनिवर्सिटी, पढ़ाई और रिजल्ट, और वो रिजल्ट का सर्टिफिकेट. मुझे याद आता है कि एक बार मधुबन में जब बाबा अव्यक्त बाप दादा आए थे और अव्यक्त बाप दादा से जब मुलाकात हो रही थी दादियों की, तो बड़ी दादी जैसे ही बाबा के सामने गई तो बाबा ने दादी से पूछा कि दादी, ये सब मधुबन निवासी आपसे संतुष्ट है? पूछा तो दादी को अचानक बाबा ने जब ये प्रश्न पूछा तो दादी कुछ बोली नहीं, मुस्कुराती रही. सब तरफ एक तरफ देख भी रही थी और एक तरफ बाबा को भी देख रहे थे. फिर बाबा ने उस समय रिजल्ट अनाउंस किया था दादी जी के लिए कि 95% संतुष्ट है आपसे, बाकी जो 5% असंतुष्ट अगर है भी वो अपने संस्कारों के कारण असंतुष्ट है. बहुत बड़ी एक रिजल्ट जिसको कहा जाए कि एक आत्मसंतुष्टि, सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट और भगवान सर्टिफिकेट सभा में दे दे दादी को. तो इसीलिए जो अष्ट रत्न में आने वाली आत्माएं हैं उसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है. तो ये संतुष्टता कैसे हमारे जीवन में आए? तो दादी की, बाबा के, मम्मा के पालना लिए हुए आत्माएं तो बहुत कम है अभी, गिनती की है, परंतु दादियों की जो पालना हम सभी ने ली है उनको अगर एक पैरामीटर के रूप में हमारे सामने रखें हम, तो कैसे वो खुद भी संतुष्ट रहे और सर्व को संतुष्ट किया उन्होंने, उस बात पर विचार चल रहा था मेरा। और तीन बातें उसमें आई। एक होता है खुशी, दूसरा होता है राजी, और तीसरा होता है संतुष्ट। किसी से भी हम मिलते हैं पूछते हैं कैसे हो, खुश राजी हो, तो हां कह देंगे, हां खुश है। तो खुशी का आधार क्या, राजी रहने का आधार क्या, और संतुष्टता का आधार क्या? तो खुशी का आधार है मिलन या मिलना। कोई भी किसी के साथ भी अगर मिलना हुआ और खुश हो जाते हैं कि वाह आपसे कितने दिनों के बाद मिलना हुआ, एक खुशी होती है। लेकिन जरूरी नहीं कि संतुष्टता है, खुशी अलग चीज है। तो मिलन की खुशी होती है। अच्छा, राजी कैसे रहेंगे? तो राजी रहने के लिए हमेशा बाबा बच्चों को कहते, जिसने राज को जाना वही राजी रहता है, जिसने राज को नहीं समझा वो नाराज होते हैं, और जो नाराज होते हैं वो संतुष्ट कैसे रहेंगे? तो संतुष्ट होने के लिए राजी रहना बहुत जरूरी है। और छोटी छोटी बातों में अगर हम नाराज हो जाते हैं तो संतुष्टता तो बहुत दूर हो जाएगी। इसीलिए हर बात के राज को समझना, ड्रामा के राज को जिसने समझा, किसी के भी पार्ट को देखते हुए राज को समझा, तो जहां राज को समझ जाते हैं वो नाराज नहीं होते हैं, और नाराज नहीं होते तो संतुष्टता सहजता से आ जाती है। लेकिन उसके लिए कौन सी बात दादियों के जीवन में हमने देखी प्रैक्टिकली? तो संतुष्ट रहने के लिए एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। अनेकों से संतुष्टता का सर्टिफिकेट कब प्राप्त होगा? क्योंकि जब तक परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं, तब तक न बाबा सर्टिफिकेट देगा न आत्म संतुष्टि का अनुभव होता है। अब परिवार से संतुष्टता की फीलिंग या सर्टिफिकेट मिलने का आधार एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। आज जैसे घरों के अंदर मान लो कि किसी ने खाना बनाया और विशेष आप गए और खाना बनाया, बहुत अच्छी मेहनत करके प्यार से खाना बनाया, और आपने खाली इतना एप्रिशिएट कर दिया, वाह बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत अच्छा, उस आत्मा को कितनी खुशी होती है। और दूसरे दिन उससे भी ज्यादा प्यार से बनाने का प्रयत्न करते हैं, उसको जो आत्मसंतुष्टि मिलती है उस वक्त। तो किसी को भी एप्रिशिएट जब कर लेते हैं, बस दो शब्द एप्रिसिएशन के कह कर देखो कि वो आत्मा किस तरह से दूसरे दिन उससे भी और अच्छी तरह से मेहनत करके और अच्छे से आपके साथ सेवा में संलग्न होकर के दिल से सेवा करना शुरू कर देते हैं। और यही दादियों ने किया और बाबा ने भी यही सिखाया। बाबा ने हमेशा बच्चों को यही कहा कि बच्चे अगर किसी की बात आपको स्वीकार न भी हो जो भी किसी ने विचार दिया आपको स्वीकार न भी हो तो भी आप कहो हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो यही कहो कि हाँ बहुत अच्छी बात, भले अंदर से आपको स्वीकार नहीं भी है लेकिन उस समय हाँ जरूर कर दो। उसके बाद अगर कोई करेक्शन दिया भी तो उसको स्वीकार करने की कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है। परंतु अगर हमने किसी भी व्यक्ति को, किसी ने कुछ काम किया और हमें पसंद नहीं आया और हमने बहुत जैसे जोर से बोलना शुरू कर दिया, ये क्या किया, ये कोई तरीका होता है, तो दूसरे दिन क्या वो व्यक्ति करेगा? जब उसको संतुष्ट ही नहीं किया तो वो कैसे वो कार्य करेगा? तो इसीलिए पहली बात संतुष्ट करने के लिए तो एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। अभी बाबा की ड्रिल में भी हम सभी ने ये बात सुनी कि बाबा जानता है कि हर एक बच्चे के अंदर कितनी कमी कमजोरी है, फिर भी बच्चों को गीत कौन सा गा करके दिखाते बाबा, वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह, एप्रिसिएशन है। और इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को भी यही गीत गाना सिखाया है कि बच्चे कोई भी बात हो तो वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, ये वाह वाह का गीत जितना हम गाएंगे, ये वाह वाह का गीत बाबा कहते अगर कोई सीन वाह वाह नहीं भी होगी तो भी वाह वाह बन जाएगी, इतनी उसमें पावर है। एप्रिसिएशन, वाह वाह कहना ये एप्रिसिएशन का एक तरीका है और यही दादियों ने हमेशा किया। कोई भी दादियों को अगर लिया जाए, चाहे प्रकाशमणि दादी हो, बड़ी दीदी हो या जानकी दादी हो, एप्रिशिएट ही किया। आज इतना बड़े विश्व के इतने सारे भाई बहनों को अगर एक सूत्र में बांध करके चलाना बिना एप्रिसिएशन के थोड़ी हो सकता है, तो एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। किसी ने छोटा सा कार्य भी किया लेकिन अगर हमारे पास वो शब्द ही नहीं है, जिसको बाबा कहते हैं कि शब्द की भी कंजूसी कर लेते हैं, तो शब्द की भी जहां कंजूसी आ जाए, अगर कौन सा खर्चा करना पड़ता है अगर हमने किसी को एप्रिशिएट कर दिया तो, लेकिन उससे क्या होगा, हमारा रिश्ता एक समीपता का बनने लगेगा। और आज दुनिया के अंदर भी यही तो इंसानों को चाहिए, तो यही बाबा ने भी हम बच्चों को सिखाया और दादियों ने प्रैक्टिकल जीवन में यही किया। दूसरा आधार है संतुष्ट रहने का कि कभी अपनी कंपैरिजन किसी से नहीं करो। जहां कंपैरिजन आती है वहां असंतुष्टि खड़ी होती है। दूसरे को देखते हैं, अरे ये मेरे से पीछे आया, इसको इतना कुछ मिल गया और मैं वहां का वहां हूं, मेरे को कुछ नहीं मिला। जहां कंपैरिजन शुरू हुई वहां असंतुष्टता की फीलिंग अंदर में आने लगती है। और दादियों ने कभी भी किसी के साथ अपनी कंपैरिजन नहीं किया। हम सभी योगी हैं, योगी माना ही योग्य, योग्य बनने के लिए यहां आए। चीज वस्तुएं तो दुनिया में भी मिल सकती थी लेकिन यहां हम योगी बनने आए। योगी बनना माना योग्य बनने के लिए आए, और योग्य बनने के लिए आए तो या तो यहां मिलेगा या वहां मिलेगा। अब चॉइस हमें करना है कि हमें कहां चाहिए, यहां चाहिए या वहां चाहिए। वो रामायण के अंदर बात आती है कि जब श्री राम सीता लक्ष्मण अयोध्या छोड़कर के जा रहे थे और गंगा पार करनी थी तो निषाद राज के राज्य में आए और उसको कहा हमको एक नाविक दे दो और नाव में हमें सामने किनारे गंगा क्रॉस करा दे, त्रिवेणी संगम क्रॉस करा के वहां पहुंचा दे। तो जो नाविक को बुलाया तो नाविक को जो है उसने बिठाया गंगा पार कराते समय। फिर वहां पहुंचने पर श्री राम को लगा भाई इसका भाड़ा तो दे दूं मैं, नाव यूज किया तो भाड़ा तो दे दे मैं। तो अंगूठी पहनी हुई थी तो अंगूठी निकाल करके कहा ये तुम्हारी नाव का भाड़ा। तो उस समय वो कहता है कि तू भी नाविक मैं भी नाविक। राम को कहते हैं तू भी नाविक, क्योंकि वो समझते ना कि पार लगाने वाले हैं, संसार सागर से पार लगाने वाले हैं। तो कहा तू भी नाविक मैं भी नाविक। नाविक एक नाविक दूसरे नाविक से क्या लेगा, एक नाविक दूसरे नाविक से ले नहीं सकता है। और फिर भी अगर देने की इतनी ही इच्छा हो तो यहां नहीं वहां दे देना। तो या तो यहां मिलेगा या वहां मिलेगा। अब ये हमें चॉइस करना होगा कि हमें कहां चाहिए। जिसको यहां चाहिए बाबा उसको यहां भी दे देंगे, लेकिन जिसको यहां मिला उसको वहां नहीं मिला, और जिसको वहां मिलेगा उसको यहां नहीं मिलेगा, तो कहां चाहिए। ये चॉइस तो हमारी है ना कि हमें कहां चाहिए। और फिर भी अगर देखो कि बाबा के पास आने के बाद बाबा ने कोई भी चीज की कमी रखी है, कोई कमी नहीं रखी है। आए थे तब क्या थे और आज क्या है, तो कमी तो कोई रखी नहीं है। लेकिन फिर भी ये चॉइस मेरी अपनी है कि मुझे यहां चाहिए या वहां चाहिए। अगर ये अंदर में पक्का कर लिया कि मुझे वहां चाहिए तो यहां संतुष्ट। अगर मुझे यहां चाहिए तो हर घड़ी असंतुष्टता की फीलिंग रहेगी, हर घड़ी कंपैरिजन होती रहेगी, हर घड़ी हम परेशान होते रहेंगे। यहां प्राप्त करने के लिए आत्मसंतुष्टि कभी नहीं होगी और वहां भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां मिलने का आधार योग्यता। जितना जितना योग्यता आपके अंदर विकसित होती जाएगी अपने आप बाबा देता जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर हम इकट्ठा करने का प्रयत्न करें तो बाबा फिर हिसाब भी तो बराबर लेता ही है ना। तो इसीलिए संतुष्टता का आधार यहां नहीं चाहिए वहां चाहिए। सुदामा चावल मुट्ठी लेकर के गया, उसको पता नहीं वहां महल बन रहा है, वहां सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल गया उसको, उसको यहां पता ही नहीं है। वो आश्चर्यचकित हो रहा था कि क्यों इतना प्यार, और वो सूखे चावल पोहा जो है इतना प्यार से श्री कृष्ण खा रहा है। लेकिन उसको क्या पता कि एक एक मुट्ठी जो खा रहा है तो वहां क्या क्या प्राप्त हो रहा था। तो इसीलिए एक ही जगह पर मिलेगा या यहां या वहां। अब हमें फाइनल करना है कि मुझे कहां चाहिए और कैसे चाहिए। दूसरी बात कि जैसे कहा जाता है कि बीज जब बोया जाता है धरनी में और उस बीज से जब वृक्ष निकलता है और उस वृक्ष के ऊपर जब फल लगता है सीजन में, तो सारे फल एक साथ नहीं आते हैं। एक दो दिन का भी मार्जिन होगा, दो चार दिन हफ्ते का भी मार्जिन होगा। पूरी सीजन 3 महीने की अगर सीजन है तो सीजन के अंत तक फल निकलता रहता है। तो इसीलिए जो हमने बोया है उसका फल मिलना जरूर है, लेकिन अगर किसी और को देख करके हम ये सोचने लगे देखो इसको बिना मेहनत के फल मिल गया और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो भी मुझे फल मिल नहीं रहा, मिलेगा। ये संतुष्टता धैर्यता, इसलिए दादी जानकी हमेशा कहती थी बिना धैर्यता के संतुष्टता नहीं आती। धैर्यता बहुत जरूरी है। जहां धैर्यता है वहां संतुष्टता का फल बहुत मीठा होगा। धैर्य का फल बहुत मीठा है, थोड़ा धीरज धरना पड़ता है। हो सकता है स्टार्टिंग में जो फल निकला उसमें वो रस कस न हो, फीका निकल जाए, और लास्ट में जो फल निकलता है वो बहुत टेस्टी होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो थोड़ा धैर्यता जरूरी है, और ब्राह्मण जीवन में अगर धैर्यता रखी तो वो फल कितना मीठा होगा सोचो। तो इसीलिए धैर्यता बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि पहले जो फल लगा बारिश आ गई, कीड़े पड़ गए, लास्ट में जो फल निकलता है उसमें कीड़े भी नहीं पड़ते, बहुत मीठा भी होता है। तो ब्राह्मण जीवन में भी जिसको बहुत जल्दी प्राप्ति हो गई, कीड़े लगने की संभावना पूर्ण है। और कीड़े कौन से हैं? अहंकार का कीड़ा। और अहंकार का कीड़ा जो लग जाता है वो किसी के काम आएगा? कोई उसको स्वीकार करेगा? उसको टोकरी से बाहर ही फेंकना पड़ता है। कीड़ा लग गया, कैसे खाएंगे उसको? बोले बहुत मीठा था, पहले पक गया, लेकिन उसको टोकरी से बाहर निकाल करके फेंकना पड़ा। बाबा कहते यहां कोई किसी को फेंकता नहीं है, अपने आप वो साइड हो जाता है, क्योंकि कीड़ा लग गया है उसको। तो अहंकार का कीड़ा जहां लगता है, ये अहंकार का कीड़ा अपने आप उसको बाहर निकाल देता है। कोई निकालता नहीं है, परमात्मा किसी को निकालता नहीं है, लेकिन जहां अहंकार का कीड़ा लगा तो नेचुरल है ना, आत्म संतुष्टि हुई क्योंकि किसी ने स्वीकार नहीं किया, ना परमात्मा ने स्वीकार किया, ना परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिला। अहंकारी को कौन सर्टिफिकेट देगा? तो इसीलिए ध्यान ये रखना है कि ऐसे हम योग्य पात्र बन जाए जो अहंकार का कीड़ा कभी न लगे। और देर से मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन बहुत मीठा होगा। जल्दी निकल आया फल और बारिश आ गई और कीड़ा पड़ गया उसमें, वर्षा हो भी गई, अगर मान लो कि बड़ों ने वर्षा, स्नेह की वर्षा कर भी दिया, लेकिन कीड़ा लग गया तो क्या हुआ? वो कीड़ा क्या देगा उसको? वो अपने आप साइड हो जाता है। इसीलिए आवश्यकता है कि धैर्यता बहुत जरूरी है ब्राह्मण जीवन में, और जहां धैर्यता है वहां वो फल भी बहुत मीठा है, और सर्व को सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट भी मिलता है, परमात्मा से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलता है। इसीलिए मुझे किसी से अपनी कंपैरिजन करनी नहीं है, मैं जो हूं जैसा हूं भगवान ने स्वीकार किया है, यही मेरे लिए बहुत है। यही सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए कि भगवान ने तो मुझे स्वीकार किया, अपना बनाया, हम जो है जैसे हैं, बस अभी जो बाबा की श्रीमत है उस श्रीमत पर चलते हुए मुझे अपने आप को योगी माना, योग्य बनाना है, ये मेरा कर्तव्य है। और इसीलिए जो योगी बनता, योग्य बनता है, वो हमेशा देवता बनता है। बाबा की संडे की मुरली याद आती है, वो लेवता नहीं होता है। जिसको जिसके अंदर लेवतापन के संस्कार एक बार जागृत हो गए, नाम मान शान अनेक प्रकार की इच्छाएं माना ही लेवता। जो देवता है उसको लेने की इच्छा नहीं देता है। तो इसीलिए तीसरा कारण संतुष्ट या असंतुष्ट होने का, जहां लेवतापन के संस्कार इमर्ज हुआ वहां क्या होगा? संतुष्ट कभी नहीं रह सकते हैं। नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, हाँ ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसकी कंप्लेन्स। तो या तो कंपैरिजन करते हैं तो उसकी कंप्लेन्स होती है, या तो इच्छाएं अंदर है तो कंप्लेन्स होती है, دوسرا ایسا کیوں کر رہا ہے، یہ ایسا کیوں کر رہا ہے. تو اسی لیے جہاں دیوتا پن کے سنسکار میں نے ایمرج کیا، دینا ہے دینا ہے دینا ہے، اور دینا آرمبھ کرو تو اوپر والا اپنے آپ دینا شروع کرتا ہے. بابا نے کہا کسی کو مان چاہیے، اپنے دے دیا بس، کیا گیا، کتنا خرچہ لگا، کچھ بھی نہیں لگا، لیکن دے دینے سے اوپر والا کتنا دیتا ہے. آپ دوسرے کو سمان دو، آپ دوسرے کو کنسیڈر کرو، ان کی بھاوناؤں کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کو ریسپیکٹ دو، تو ضرور ہے یہی گیان ہے. ارتھات گیان کو جس نے ہجم کیا ہے اس کو لینے کی بھاونا نہیں ہوں گی، دینے کی بھاونا ہوں گی. اور چوتھی بات جو بابا کہتے ہیں کہ سنتوشتا کی نشانی پرسنتا. تو جو پرسن چت رہتا ہے وہ پرشن چت کبھی نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی بات کے پرشن نہیں. بہت اچھی ڈرل کے اندر ہم نے کہا سنتوشت منی، یہ بات بابا کی سنی، سنتوشت منی مانا، منی مانا ہی فل سٹاپ. تو فل سٹاپ لگانا جس کو آتا ہے، بندی لگانا جس کو آتا ہے، وہی سنتوشت منی بنتا ہے. جو پرشناتمک چنہ بار بار لگاتا رہتا ہے جیون میں بھی، ہر بات کے لیے جس کے اندر پرشن ہی پرشن ہو، وہ کبھی بھی سنتوشت نہیں رہ سکتا، پرسن نہیں رہ سکتا ہے. تو اسی لیے پرشن چت نہیں، پرسن چت اگر مجھے رہنا ہے تو بندی لگانا مجھے سیکھنا ہوگا. اور جو ہر بات میں بندی لگا سکتا ہے وہ سدا سنتوشت ہوا ہی پڑا ہے، اس کی سنتوشتتا میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کو تینوں سرٹیفکیٹ اپنے آپ پراپت ہونے لگتے ہیں. بابا نے ہم سب بچوں کو انیک وشیشتاؤں سے بھرپور کیا ہے، اور اسی لیے جب انیک وشیشتاؤں سے بھرپور کیا ہے، اس وشیشتا کو میں جتنا پریوگ کرتی جاتی ہوں، یہ برامن جیون کو ایک ادیش بھی دیتا ہے. برامن جیون کا ادیش کیا ہے، اس کے لیے بابا نے ہمیں یہ دیا ہے وشیشتا، کہ وہ وشیشتا کا پریوگ کرتے جاؤ. اس لیے کہا یوگی کا دوسرا مطلب ہے پریوگی، جو جیون کے اندر پریوگ کرتے ہوئے انیک آتماؤں کو سنتوشت کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، وہ ہے یوگی، پریوگی، یوگی اپنے آپ بن جاتا ہے. باقی تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ کچھ باتیں آپ سب کے ساتھ شیئر کیا. اوم شانتی.
پیارے بابا تمہارا یہی کہنا ہے، پہنے رہنا گنوں کا یہی کہنا ہے، کرتے چلو سب کو پیار، دیتے چلو ستکار، تمہیں تاروں سے آگے نکلنا ہے. پیارے بابا تمہارا یہی کہنا ہے، پیارے بابا تمہارا یہی کہنا ہے. گگن سے اونچے رکھو وچار، دھرتی جیسا دھیریا پار، نینوں میں روحانی پیار، نینوں میں हद में रहना ना हद में ठहरना सदा नदिया सबे रहना है प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है गुलिस्तान खिले होठों को मुस्कान मिले जग को जीवन दान मिले आए गम की ना हवाएं देते रहो दुआएं नहीं अब गुण को मन में धरना है प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है कठनी करनी एक बने कर्म तुम्हारे नेक बने देख के और अनेक बने देख के और अनेक बने तुमको योगी बन के रहना पावन पावन से बनना जैसे निर्मल सा झरता झरना है प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है करते चलो सबको प्यार देते चलो सत्कार तुम्हें तारों से आगे निकलना है प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।